हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय से श्लोक संख्या 35 से प्रारंभ करके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदयहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णयुतमीशमीवर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मङ्गलमहोत्सतां महत्तामपि कौरव्यं विद्यैकान्तिकनिष्कृतम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 6 जिसका शीर्षक है विश्वरूप की सृष्टि। तो हमने देखा प्रत्येक वस्तु के पीछे भगवान की करुणा और कृपा का ही सहारा है। जी संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो जड़ है, चेतन है, या फिर हमारा स्वयं का शरीर है, उसकी इंद्रियां हैं, जो कुछ भी हैं वो भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं। भगवान के कारण ही हम ये सब संसार को भोग रहे हैं। भगवान के कारण ही हमारी इंद्रियों से, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से, विचारों से कुछ भी हम कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा करुणा जो है वो भगवान की कृपा से ही हम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान यदि हमारी सहायता ना करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता, क्योंकि उसको भी शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं। तो इतना सब भगवान ने हमारे लिए किया, प्रत्येक अंग में विराजमान हो गए, प्रत्येक वस्तु में अपने आप को इतना विस्तारित कर दिया कि ये जीव जो जन्म जन्मांतर से भगवान से दूर है, वो भगवान किसी न किसी तरह से जीव की सहायता करते रहते हैं, ताकि जीव इस संसार को भोगते भोगते कभी भगवान की ओर सन्मुख हो जाए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बस ऐसे चलते चलते कभी जीव का भगवान की ओर मुख हो जाए। इसलिए भगवान ने साफ साफ कहा और कुछ नहीं करना तुम्हें, सन्मुख होवे जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासों तबही। तुम बस एक बार मेरी ओर देखो तो सही, एक बार मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे अपराधों को नाश कर दूंगा। तुम एक बार मेरी शरण में तो आओ। अहम तो हम सर्व पापे भी हूँ, परंतु जीव कितना मूर्ख है कि भगवान की इन सब अनुकंपाओं को, इन सब कृपाओं को भूल जाता है और संसार में केवल वह आनंद तलाश करते 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 ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा है और अब भी वही कर रहा है और अब भी उसे बुद्धि नहीं आती। ये शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, ये इसको पढ़ने का वास्तविक लक्ष्य यही है कि हम भगवान की कृपा को, भगवान की करुणा को, भगवान की अनुकंपा को रियलाइज कर सकें कि भगवान ने हमारे लिए कितना कितना कुछ किया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः निर्माण करके अपने इस जीवन को सफल कर सकें। तो आज हम श्लोक नंबर 34 से प्रारंभ करेंगे। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। एते वर्ण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सहवृत्तिभिः। एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता सहवृत्ति भी। शब्दार्थ एते वर्ण, यानी जो वर्ण अभी हमने पढ़े ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये सारे वर्ण यानी समाज की जो श्रेणियां हैं, स्वधर्मेण यानी अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्यों द्वारा, यजन्ति अर्थात पूजा करते हैं, जैसे जैसे उसके कर्तव्य हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना। और जो क्षत्रिय हैं उनका कर्तव्य है समाज को सुरक्षित रखना और कर वसूल करना। और जो वैश्य हैं उनका कर्तव्य है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, कृषि करना, गौरक्षा करना और व्यापार करना। और क्षुद्रों का कर्तव्य है अन्य जितने भी वर्ण हैं उनका उनकी सेवा करना। तो ये जो सारे स्वधर्मेण यानी अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्यों द्वारा यजन्ति, उनको भगवान की पूजा करनी है, पूजा करते हैं। और कैसे? स्वगुरुम, स्वगुरु मतलब अपने गुरु, हरि मना भगवान को, अपने गुरु और भगवान को श्रद्धया, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक। ये भक्ति, ये जो पूजा, ये जो अर्चना, ये जो साधना है वो आपकी श्रद्धा के ऊपर टिकी हुई है। आप कुछ भी करो, 56 जो भोजन भगवान को अर्पण कर दो, भले कितना ही नाम जप कर लो, भले कितना ही यज्ञ तपस्या दान दे दो, यदि श्रद्धा नहीं है, यदि उसके अंदर विश्वास नहीं है भगवान के अंदर, और श्रद्धा किसके अंदर होनी चाहिए? भगवान के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जो हमारे गुरु महाराज हमें बता रहे हैं कि इससे आपका कल्याण होगा, अपने गुरु के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इनके एक एक शब्द पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कभी अपनी श्रद्धा के जो श्रद्धा का जो महल है उसको कभी ढकमका मत देना। कोई चाहे संसारी माया तो हमें बहुत बहुत भटकाने का प्रयास करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है केवल महामंत्र से उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है केवल भागवत पढ़ने से उद्धार हो जाएगा, केवल श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी। संसार चाहे कुछ भी कहे, अपनी श्रद्धा को कभी विचलित मत होने देना। इसी का श्रद्धया यानी भक्ति पूर्वक, श्रद्धा के पूर्वक। और आत्मा यानी आत्मा विशुद्धार्थम, शुद्ध करने के लिए, यत मना जिससे जाता उत्पन्न है, सह वृत्ति भी, सह मतलब उसके साथ, वृत्ति भी मतलब वृत्ति पर कर्तव्य। अनुवाद, ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं, यानी जितने भी वर्ण हैं वो सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण सर से, भुजाओं से क्षत्रिय, उनके कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र, तो ये पूरा का पूरा भगवान ही है। पूरा ये जो संसार में जो कुछ भी है भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, जिधर दिखता है। एक बार क्या हो जानते हो, एक भक्त ने अधर्म की निंदा कर दी, किस ये अधर्म जो है वो कितना खराब है संसार को, संसार में जो कुछ भी गलत हो रहा है अधर्म के कारण हो रहा है ना। फिर वो आके घर में सोच रहा था, मतलब जब इसने अधर्म की उस समय प्रचार के टाइम पर तो निंदा कर दी, फिर जब उन्होंने बहुत ध्यान किया तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने कहा, संसार में हम किसी की भी निंदा कर रहे हैं तो वास्तव में भगवान की कर रहे हैं, क्योंकि धर्म यदि भगवान का वक्षस्थल है तो अधर्म भगवान का पीठ है। तो जो भी हम अगर किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना संसार में, किसी के साथ भी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कैसा भी कोई भी जीव हो, यदि हम उसको दुख पहुंचाते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान को दुख पहुंचाते हैं। यदि हम उसकी निंदा कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान की निंदा कर रहे हैं। तो हमको कभी किसी के लिए भी गलत विचार नहीं करना चाहिए। सब जो जैसा है वो अपने कर्मों के अनुसार है, वो सही है गलत है उसका डिसीजन भी लेने वाले हम कौन हैं। हमें तो ये देखना है कि हम सही हैं या गलत हैं। हमें अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर चेंजिंग्स लानी है, अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास को लाना है। तो यहाँ पर बताया कि जितने भी वर्ण आश्रम, वर्ण धर्म है, अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। इस तरह बद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तो चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, एक शुद्ध गुरु, एक शुद्ध वैष्णव, और कल हमने पढ़ा गुरु कैसा होना चाहिए, चाहे उसके अंदर दूसरी क्वालिटीज हो। भगवान ने कहा, कल हमने पढ़ा कि किबा विप्र किबा व्यासी शूद्र खेने ये नया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होया। जो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन वो जब तक भगवान के विज्ञान को पूरी तरह से समझता नहीं है, जब कृष्ण की पूरी रूप से शरण में नहीं आया है, जब अभी तक उसे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा है, अगर अभी तक अपने इंद्रियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाया है, यदि वो अपने आप को कृष्ण का दास नहीं मानता है, तब तक वो कृष्ण गुरु बनने के योग्य नहीं। क्योंकि षट कर्मो निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात्, वैष्णव सपच गुरु। चाहे वो अपने कर्तव्यों में बहुत ही निष्णांत हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन सारे मंत्रों को तंत्रों को जानता है, लेकिन वैष्णव नहीं है। और वैष्णव का क्या मतलब है, जो पूर्ण रूपे न भगवान श्री कृष्ण के समर्पित हो, ऐसा यदि वो नहीं है तब तक तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो हम चाहे किसी भी वर्ण में हो, आश्रम में हो, हमें अपने शुद्ध वैष्णव गुरु के निर्देशानुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम कितना प्योरिटी से भगवान के साथ प्रार्थना करते हैं, कितना हम भगवान को गुरु के लिए, हमें सिर्फ कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं खोजना चाहिए, किसी व्यक्ति में कभी भी मत देखना चाहिए कि ये गुरु बनने के योग्य है या नहीं है। अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या मैं एक शुद्ध गुरु का, शुद्ध वैष्णव का शिष्य बनने के योग्य हूँ। और भगवान से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे एक शुद्ध वैष्णव गुरु का शिष्य बनने की योग्यता प्रदान करो। जब आप गुरु तो खोज रहा है कि कोई मुझे शुद्ध वैष्णव गुरु शिष्य मिल जाए, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं किसी भी गुरु के पास। आप अगर भगवान से ये प्रार्थना करते हो और अपने अंदर यदि हम शुद्धता लाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं ही एक शुद्ध वैष्णव गुरु को हमारे पास भेज देते हैं। हमको सिर्फ अपनी साइड से देखती हैं, कुछ भी नहीं संसार में, सिर्फ अपने आप को अच्छे से अच्छा कृष्ण भक्त बनाना है भगवान। और हमारे अंदर एक ही इच्छा हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, संसार में मेरा वैभव हो, संसार में मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, ये सब सोचकर हमको कभी भी शुद्ध वैष्णव गुरु तब मिलेगा जब संसार में हृदय में केवल एक ही इच्छा होगी कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। बस भगवान ने कहा अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परियोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम अनन्य चित्त से मेरा ध्यान करो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति निस्तर, जो कंटिन्यूअस मुझे स्मरण करता है, मुझे पाने की के लिए इच्छा करता है, उसके योगक्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। जो कुछ है उसकी साधना, उसकी भक्ति, उसकी संरक्षण मैं करूँगा और जिस वैष्णव शुद्ध वैष्णव गुरु की उसे आवश्यकता है वो उसे मैं प्रोवाइड करूँगा। हमें केवल अपनी साधना में, अपनी प्योरिटी में, अपनी सिंसियरिटी में ध्यान देना है कि हम कितने प्योर हैं। तो यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांग तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं, यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने, जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है। समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, अथवा ब्राह्मण संस्कृति जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जैसे हमारे शरीर के सारे जो अंग हैं वो हमारी शरीर की सेवा के लिए हैं, उसी तरह ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के अंग हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब तक जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होता है तब तक उसको ये बुद्धि नहीं आती, लेकिन मनुष्य शरीर में तो उसको ये उससे ये आशा की जाती है कि वो वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे समझे कि हमें भगवान की सेवा करनी है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीव आत्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाता तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही। इस दशा में माया सर्वोच्च होगी, इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते क्योंकि वे बद्ध हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। तीन गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं, इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से ना केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख है वह मान्य विधि है, विधि के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है। अन्य किसी विधि की प्रमाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। तो आगे लिखा, श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में इस सत्य की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के विषय में एक मुख्य बात बता रहे हैं कि हम चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, कहीं पर भी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धयात्म विशुद्धयार्थम यजंता सहवृत्ति भी, कि हमें अपनी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। इसे कैसे करनी चाहिए? एते वर्ण स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरि, के उस भगवान की सेवा अपने गुरु महाराज के निर्देशानुसार करना चाहिए। तो हम ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिनकी दीक्षा नहीं हुई होगी, तो वो किस तरह से अन्ना भगवान की पूजा करें? तो गुरु के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, हम जब तक गुरु नहीं करते हैं तब तक हमें श्रील प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानना चाहिए। क्योंकि हम जो शास्त्र आज हम भक्ति के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, और शास्त्र को जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, आज हम भक्ति के नाम पर जो भी कर रहे हैं ना, वो श्रील प्रभुपाद जी की देन है। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे शास्त्र ना लिखे हुए होते, इतने सुंदर तरीके से गीता और भागवतम का तात्पर्य ना लिखा होता, अगर उन्होंने ये पूजा पद्धति ना सुनाई होती, यदि उन्होंने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करके सारे भक्तों को यह आदेश ना दिया होता कि जाइए हर जगह पर जाके प्रचार कीजिए, तो हम चाहे किसी को भी गुरु मान रहे हैं, चाहे हम किसी से भी सीख रहे हैं, आज हम जो ये मंत्र जप कर रहे हैं ना, आज हमको मंत्र ये जो जप करने का अवसर मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिला है। आज हम जो ये भागवत पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हुआ है। तो हम चाहे किसी से भी सीख रहे हो, ये इतना मैटर नहीं करता कि ये शब्द मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ या कोई और पढ़ के बता रहा है, ये सारा का सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। इसलिए हमें हृदय से श्रील प्रभुपाद जी का हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा है। कितना तो उन्होंने सहा है, कितना तो उन्होंने सेक्रीफाई किया है, अपने शरीर को नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा, दिन रात मेहनत किए हमारे लिए कि हमारा उद्धार हो जाए, हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण को पुनः निर्मित कर सकें। तो हमें सदैव श्रील प्रभुपाद जी का कृतज्ञ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के आदेशानुसार ही हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही उपदेश दिया जा रहा है इस श्लोक में कि प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में ये प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं। उन्हीं के आज्ञा के अनुसार हम आज ये जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के कारण है। यदि श्रील प्रभुपाद जी ना होते, हम कभी सोच सकते हैं ना जाने किस दुर्गति में हम आज गए होते, ना जाने आज हम किसी दूसरों को देखते हैं। आज मैं इंटरसिन में जाती हूँ, वहाँ पर मैं देखती हूँ लोग ना जाने क्या क्या पूजा विधि कर रहे होते हैं, वो कि उनको भगवान के विषय में पता ही नहीं है, उनको महामंत्र के विषय में पता ही नहीं है, वो बस एक व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो वो चाहे भगवान कोई भी हो, किसी को भी बनाने के लिए तैयार हैं, वो चाहे मनुष्य हो या गधा हो, वो मेरी इच्छाएं पूरी करता है। ये तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उधर जाकर कि ये इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो तो बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है, उनके ऊपर तो बस कृपा नहीं हुई किसी श्री प्रभुपाद जैसे जैसे संत की, वरना आज हम भी वहीं पर होते, हमारा भी वही हाल होता, हमें भी कुछ पता नहीं होता, हम भी यूं ही किसी किसी मनुष्य को, किसी किसी को भी है ना भगवान मानकर उसकी पूजा कर रहे होते और अपनी इंद्र तृप्ति के साधनों को छोड़ रहे होते। ये सारी कृपा श्री प्रभुपाद जी की है और हमें हृदय से हम अपने पूरा जीवन यदि हम श्री प्रभुपाद जी की कृपा के लिए उनको धन्यवाद करते रहना तो भी कम है, क्योंकि ये जीवन भले ही हमें भगवान ने दिया हो लेकिन इस जीवन का उद्देश्य हमें श्री प्रभुपाद जी ने दिया है। इसीलिए कहते हैं, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लाखों पाव, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दियो दिखाए। हमारे सामने भी भगवान आ जाते ना यदि, हम फिर भी ना पहचान पाते यदि श्री प्रभुपाद जी ने हमें इतना स्पष्ट भगवान का परिचय न कराया होता। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ए तद क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिण कह श्रद्धया उपाकर्तुम योग माया बलोदयम्। एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धया उपाकर्तुम योग माया बलोदयम्। एतत् क्षत्तर भगवतो, एतत् मन यह क्षत्तः यानी हे विदुर, भगवतो यानी भगवान का, दैव कर्मात्म रूपेण विराट रूप के दिव्य कर्म काल तथा प्रकृति का, कह कह मन और कौन श्रद्धयात अर्थात आकांक्षा कर सकता है, उपाकृतम यानी समग्र रूप में मापने के लिए, योग माया यानी अंतरंग शक्ति के, बल उदयम यानी बल द्वारा प्रकट। तो भगवान की इतनी असीम परसीम जो महिमा है, भगवान का जो दिव्य गुण है, भगवान की जो अंतरंग शक्ति के द्वारा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की का रूप है, जो ये उसके कर्म है, उसका जो दिव्यता है, उसको कोई भी माप नहीं सकता, भगवान की इस शक्ति को कोई नहीं समझ सकता है, तो उसका आंकलन कोई नहीं कर सकता। वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये सब मैं तुम्हें बताया तो है, जैसा मैंने गुरु महाराज से, जैसा मैंने वैष्णवों से सुना है और अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैं समझ पाया बस ऐसे तुम्हें बताया है, बाकी ये मत समझना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्योंकि इसको कोई नहीं समझ सकता है। अनुवाद देखिए, हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या इसका अंकलन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कूप मंडूक दार्शनिक भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहें, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल दर्शन को माप नहीं सकता। तो कूप मंडक मतलब कुएं के जो मेंढक हैं, वो भगवान के विशाल स्वरूप जो विराट है उसके बारे में बड़े कितनी भी कल्पना कर लें लेकिन उसको कोई समझ नहीं सकता। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं। वे कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता 11.16 में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा, अनेक वक्त अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पूर्णस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ और वे सभी अनंत हैं। मैं इस रूप का ना तो अंत पा सकता हूँ, ना मध्य और ना ही आदि। श्रील प्रभुपाद जी के ने श्रीमद भगवद गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके मनोरथ पर उसके समक्ष विश्वरूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्वरूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थी। इस तरह यद्यपि वह भगवान के समक्ष हाथ तथा मुख सब कुछ देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा तो भला और कौन ऐसा कर सकता है। हाँ, कोई कूप मंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूप मंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की आकार लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर ही पट गया और इस विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर सुझाव दे रहे हैं कि भगवान को समझना संभव नहीं है। भगवान की शक्ति को, भगवान के कर्मों को, भगवान की बहिरंगा शक्ति को, भगवान के विश्व स्वरूप को हम नहीं समझ सकते। वो अर्जुन जिसको भगवान ने स्वयं विश्वरूप दिखाया, जिसको विश्वरूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी, वो भी कह रहा है कि मैं ना अंत ना अंतम ना मध्यम ना पूर्ण अस्तवादम, ना अंत देख रहा हूँ ना मध्य देख रहा हूँ ना आदि देख रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अपनी इस कूप मंडूक जैसी, कुएं के मेंढक के जैसी छोटी सी बुद्धि से भला भगवान को क्या समझेंगे। तो भगवान समझने का विषय नहीं है, तो करना क्या है। जैसा हमें पिछले श्लोक में ये सुझाव दिया कि हम भगवान का एक शुद्ध भक्त का आश्रय लें और उसके कहे अनुसार दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा करें, और जैसे जैसे हम भगवान के शुद्ध भक्तों के सुझाव के, उनके निर्देशन के अनुसार हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये नमा उपयान्ति ते। तुम यूँ प्रेम के साथ मेरा भजन करते रहो, शुद्ध वैष्णवों के आदेश अनुसार मेरी सेवा करते रहो, फिर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मुझे प्राप्त करना है किस तरह। वो सब मैं बुद्धि ददामि बुद्धि योगम वो मैं करूँगा, तुम सिर्फ प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा भजन करो। मैत्रेय मुनि कहते हैं, लेकिन भले ही मैं भगवान को नहीं समझ सका, नहीं समझ पाया, ना ही समझ पा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपने जैसी मुझे गुरु महाराज ने प्रेरणा दी है और जैसा कुछ मैंने शुद्ध भक्तों की वाणी से सुना है उसी के अनुसार यथामति यथाश्रुतम में बता रहा हूँ, और इसी से मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। वास्तव में भगवान के विषय में जब हम बोलते हैं तो उसी से हमारा भी जीवन पवित्र होता है, बोलने से और बोलने वालों से और श्रवण करने से, तभी से हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। वे कहते हैं, तथापि कीर्तयामंग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम् गिरं मन्याभिधास्सति तथापि कीर्तयामंग यथामति यथाश्रुतम् कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम्मन्या भिदासति। तथापि कीर्तयामंग, तथापि इसलिए, अपि मना यद्यपि ऐसा है, कीर्तयामी मैं वर्णन करता हूँ अंग हे विदुर, यथा मति यथा श्रुतम, यथा मना जिस तरह, मति मना बुद्धि है, यथा मना जिस तरह, श्रुतम मना सुना हुआ है। कीर्तिम हरे स्वाम सत कर तुम, कीर्तिम मना यश, हरे यानी भगवान का, स्वाम यानी निजी, सत कर तुम यानी शुद्ध करने के लिए, गिरम अन्याभिधा असतिम, गिरम मना वाणी, अन्याभिधा अन्यथा, असतिम यानी अपवित्र रहेगी। अनुवाद, अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भद्द आत्मा की शुद्धि के लिए, उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाती है, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेतनाता कृत्रिम है, बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है तो या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि हमारे शरीर जो है उसमें आत्मा है, और आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है, और चेतना की शुद्धि के लिए हमारे जो शरीर के अंग हैं उसके द्वारा हमें पवित्र कार्य करने पड़ेंगे। यदि हम कार्य करना छोड़ दें तो वो कृत्रिम वृद्धि है, क्योंकि भगवान ने कहा ना ही कर्षित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। किसी को हम कृत्रिम तरीके से बेहोश करके उसको कार्य करने से रोक सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, दवा का असर जाएगा तो वो पुनः अपना कार्य करता रहेगा। यदि शरीर को कार्य करने से रोक दिया जाए तो भी चेतना तो कार्य करती रहती है, मन बुद्धि तो कार्य करते रहते हैं, तो इस तरह से तो चेतना फिर से कार्य करती रहती है। तो उसको क्या कैसे शुद्ध करेंगे? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, यानी कि भले हम भगवान को नहीं समझ सकते, जैसे पहले श्लोक में बताया कि भगवान को समझना तो संभव ही नहीं है, तो फिर ये प्रचार क्यों हो रहा है, तो फिर हम क्यों ये चेष्टा कर रहे हैं? तो ये सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने के लिए, जो बोला जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो भगवान ना बोलने का विषय है ना श्रवण करने का विषय है। भगवान तो केवल प्रेम करने का विषय है, लेकिन उस भगवान के विषय में बोलकर भले हम समर्थ नहीं है तो भी हम शुद्ध हो रहे हैं उसके विषय में सुनकर। भले ये विश्वरूप जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया, किस तरह से उसके अंदर देवता आ गए, किस तरह से भगवान हमको है ना देखने की, सुनने की, समझने की, विचार करने की शक्ति प्रदान, ये क्या समझने का है? ये समझ में थोड़ी आ रहा है, ये सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए अपवित्र, यानी कि अगर भगवान के विषय में नहीं बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो जबान बोलेगी ना, वो अपवित्र होगा। भगवान के विषय में नहीं बोल रही है तो अपवित्र है, हम भगवान के विषय में नहीं सुन रहे तो अपवित्र है। तो अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णन कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरु मुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। यानी शोध का मतलब ये कोई हमारी मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं कि भगवान ऐसा होगा हम अपनी तरफ से बोलें, लेकिन भगवान को कैसे सुनना है, जैसा उन्होंने अपने गुरु महाराज से सुना था, यथा श्रुतम, यानी गुरु से सुनकर उसके अनुसार जैसा बुद्धि में समझ में आया अपने गुरु के शब्दों को एज इट इज बताना है बस। तो लेकिन सुनने का परिणाम है, अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथा संभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करते रहना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ये भी बता रहे कि शुद्ध वैष्णव गुरु के पास जितना ज्ञान है, वो भगवान के साथ कितना पवित्र संबंध है, जिसके कारण वो तो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन हम जैसे अपवित्र जीव उनको एज इट इज जैसा जैसा उन्होंने कहा ऐसा नहीं समझा सकते, लेकिन फिर भी अपनी ओर से भरसक, मतलब 100% अपनी ओर से सिंसियरली प्रयास करना चाहिए। बस यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, और हमारे गुरु महाराज हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम सिंसियरली उनके जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है उनके शब्दों को भरसर अपनी तरफ से जितनी हमारी बुद्धि है, जितने हमारे पास शब्द हैं, जिस तरह से हम एग्जांपल कर सकते हैं उस तरह से उन शब्दों को बताने का बस प्रयास करें, किंतु भरसर प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। कुछ तो बताएंगे भगवान के विषय में, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं हुआ, ये तो किसी के लिए संभव नहीं है। तो ये नहीं फर्क नहीं पड़ता कि भगवान को पूरी तरह से समझा दिया। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, बस अपने मन से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से भगवान की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। वरना बोलना, सोचना का और शारीरिक क्रिया अगर भगवान से नहीं जुड़ेगी तो वो अपवित्र बनी रहेगी। बद्ध जीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी तीन दंड धारण करता है, और ये दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक है, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सार पूर्ण है, अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है, भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेद भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। श्री प्रभुपाद यहाँ पर त्रिदंडी और एकदंडी सन्यासी के विषय में बता रहे हैं। त्रिदंडी सन्यासी जो है वो तीन दंड धारण करते हैं और ये दंड क्या है, शरीर मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने का व्रत का प्रतीक है कि मैं अपने शरीर से भी भगवान की सेवा करूँगा, अपने शब्दों से भी भगवान की सेवा करूँगा और अपने मन से भी भगवान की सेवा करूँगा। लेकिन एकदंडी सन्यासी का जो एकदंडी सन्यासी होते हैं जो निराकार में एकाकार होने का व्रत लेते हैं कि मैं भगवान के अंदर लीन हो जाऊँगा, वो प्रचार नहीं करते और ना ही वो भगवान शरीर से कोई विग्रह सेवा करते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि चूंकि भगवान परम हैं अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है, तो जो महिमा जो त्रिदंडी सन्यासी या जो भगवान के जो भक्त गाते हैं वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएँ भगवान जैसी ही सारपूर्ण है। वो जब भगवान के विषय में बताता है तो उससे क्या होता है, भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार भगवान से एकाकार हो जाते हैं। वो अपने आप को भगवान के दास के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। वो शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बन जाता है। भक्ति की यह एक साथ अचिंत्य भेदाभेद अचिंत्य है कि वो भगवान के साथ अपने मन बुद्धि अपने हृदय से तो एकाकार हो जाता है लेकिन अपने शरीर के साथ सदैव भगवान की सेवा करता रहता है और ये अचिंत्य भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है, वो प्योर हो जाता है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। पूर्ण सफलता क्या है कि हमें हमारा मन हमारी बुद्धि हमारी वाणी भगवान में लगी रहे और हम शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करते रहे, यही पूर्ण सफलता है क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब मैत्रेय मुनि एक बहुत ही सुंदर श्लोक बता रहे हैं कि मानवता का सर्वोच्च सिद्धि प्रत लाभ क्या है। हम मनुष्य बने हैं तो वो सबसे सुंदर लाभ क्या है जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। बहुत ही सुंदर मेरा प्रिय श्लोक है। इसमें मैत्रेय मुनि कहते हैं, एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलैर गुणवाद माहु श्रुतिश्च विद्वत् विरूपाकृतायां कथा सुधायां उपसंप्रयोगम्। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलैर गुणवाद माहु श्रुतिश्च विद्वत् भीरुपाकृतायां कथा सुधायां उपसंप्रयोगम्। शब्दार्थ एकांत लाभम, एकांत मतलब बेजोड़, बस एक ही हो, दूसरा उसके जैसा और कोई नहीं। लाभम मतलब एक ही लाभ है। वचस अर्थात विवेचना द्वारा, नूपुंसाम अर्थात परम पुरुष के बाद, सुश्लोक कमौलैर गुणवाद माहु। सुश्लोक अर्थात पवित्र, मौलै अर्थात कार्यकलाप, गुणवादम अर्थात गुणगान, आहु ऐसा कहा जाता है। श्रुतिश्च विद्वत् विरूपाकृतायां, श्रुति अर्थात कान का, च भी विद्वत् भी अर्थात विद्वान द्वारा, उपाकृतायाम अर्थात इस तरह संपादित कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम्। कथासुधायाम् ऐसे दिव्य संदेश रूपी अमृत में उपसंप्रयोगम् अर्थात असली उद्देश्य को पूरा करता है निकट होने से। अनुवाद देखिए, मानवता का सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मानवता का जो सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ है जीवन का, हम कभी सोचे ना हमारे जीवन का सबसे सुंदर लाभ क्या है, तो क्या है, पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त रहना। बस पवित्र कर्ता मतलब भगवान जो है, जो हमारे जीवन को पवित्र कर सकते हैं, ऐसे भगवान पूर्ण पवित्र हैं, तो उनके जो कार्यकलाप हैं, उनकी महिमा है, उनकी चर्चा में प्रवृत्त रहना। बस हम भले भगवान को समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह से, लेकिन उनके विषय में बोल, ये भगवान ने कहा, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतस्य माम नित्यं तुष्यन्ति चरमण दिश। वो तो मेरे भक्त हैं जो सदैव मेरे बारे में ही कथा करते रहते हैं। और ये कैसी है, आगे कहते हैं, ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए। ये कितना सुंदर तरीके से बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी ने कितना सुंदर वेद व्यास जी ने रचना की, प्रत्येक शब्द को कितनी सुंदरता से लिखा, और उससे भी बढ़कर श्रील प्रभुपाद जी ने प्रत्येक शब्द को कितने रसमयी अंदाज में उन्होंने बताया है। तो कितना सुंदरता से भगवान के भक्तों ने इसको लिपिबद्ध किया है। और ये क्या है, कथा सुधायाम, ये कथा अमृत है। सुधायाम उप संप्रयोग, इसलिए हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल इस कथा को श्रवण करने से, ये कथा अमृत के जैसे, जैसे हमने सुना था देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था ना, उससे जो अमृत निकला था, वो अमृत जो इन्होंने मेहनत से कितना परिश्रम करने के बाद निकाला था, वो अमृत का घड़ा लेकर आ गए थे कि हमें ये अमृत की बदले में कथा अमृत दे दीजिए। वो पूरा का पूरा अमृत का कलश वो इस कथा की बदली में देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहां सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तुच्छ अमृत की तुलना तुम भागवत और कथा अमृत से कर रहे हो। ये भागवत का जो अमृत है वो तो ये तुम्हारा अमृत इसके आगे कुछ नहीं है। ये कथा जीव को अमृत का मतलब क्या है जानते हो, अमृत का मतलब होता है उसको अमर बना दे, वो वापस कभी मरे नहीं। लेकिन देवता उस अमृत को पीकर अमर थोड़ी होते हैं, भले उनका जीवन हमारे जीवन के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो, लेकिन देवता भी अमर नहीं है। लेकिन जो ये कथा का पान करता है वो तो निश्चित रूप से अमर हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो इस धाम को प्राप्त करता है जहाँ से कभी नीचे नहीं गिरना पड़ता, जहाँ से कभी दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि निर्विशेषवादी भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अतीव भयभीत रहते हैं। ये तो केवल भक्त है, भक्ति करना कोई है ना कायर के बस की बात नहीं है। आप जो माला उठाकर नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप जो भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए इतना उत्सुक रहते हो। मैं देखती हूँ कुछ भक्त चार चार ग्रुप्स में चार चार लेक्चर सुनते हैं, धन्य हैं भगवान के विषय में सुनने का इतनी रुचि, ये बहुत ही महान है। हर कोई कर नहीं सकता, सुनना कौन चाहता है आज, आज हर कोई अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन भगवान के विषय में श्रवण निर्विशेषवादी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्म की दिव्य पद से प्राप्त सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वो सोचते हैं अभी ये कृष्ण भगवान ये आते संसार में, वो चोरी करते हैं, वो रासलीला करते हैं, ये सुनकर क्या लाभ होगा। वास्तविक लक्ष्य तो ब्रह्म के अंदर लीन होना है। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो लौकिक होता है, किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वह भिन्न है। सुख का भाव क्या है? श्रुते विरूपाकृतायां कथा सुधायां उपसंप्रगोको, कि एकांत लाभ यही है कि हम भगवान की कथाओं को सुने। वो निर्विशेषवादी सोचते हैं कि इस संसार में आकर जो भी कोई काम करता है, कोई भी कार्य करते हैं, वो भौतिक होते हैं, चाहे वो भगवान ने ही क्यों ना क्यों, लेकिन इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त किया गया है भिन्न है, क्योंकि यह परम परमेश्वर परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है जिनके गुण दिव्य होते हैं। गुणवादम शब्द महत्वपूर्ण है। सुश्लोकमौलय गुणवादमाहुं, ये जो गुणवाद है भगवान का, क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप एवं उनकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। मैत्रेय जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता, फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धिप्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। बस ये मैत्रेय मुनि कोई साधारण मुनि तो नहीं है, इसीलिए वो कोई भौतिक गुणों की चर्चा में तो रुचि नहीं रखते होंगे, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि इस संसार में यदि कोई पूर्णता है, यदि कोई सर्वोच्च सिद्धि है, तो क्या है? भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना। इसीलिए श्री राजीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत परे। कैवल्य सुख का मतलब होता है भगवान के अंदर लीन हो जाना। तो श्री राजीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के संबंध की जो कथाएं हैं, जो हम आज भागवतम श्रवण कर रहे हैं, कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत परे हैं। भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि उन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और कान तथा जीभ का भी सदुपयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवतम ऐसा ही एक महान ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु को सुनने सुनाने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि आप इस संसार में केवल सुनने सुनाने से ही सब कुछ होता है ना। संसार में हम देखें दो लोग आपस में बैठे हैं, बिल्कुल अनजान है, किसी ने मुख से कुछ बोल दिया, उसने सुन लिया, या तो उससे प्रेम हो जाएगा या उससे नफरत हो जाएगी। इसी तरह से यदि हमें भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के इन कार्यकलापों को जीवन का लक्ष्य तो यही है कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो। तो प्रेम की प्राप्ति तभी होगी जब हम ऐसे सुंदर शब्दों को श्रवण करेंगे, भगवान की महिमा को श्रवण करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। तो जीवन का सर्वोच्च लाभ यही है जो आप हम सब अभी कर रहे हैं, भगवान के विषय में सुनना और भगवान के विषय में बोलना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।